आज कल
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। स्वाति और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज हम दाइश के बाद इराक में होने वाले परिवर्तनों की समीक्षा करेंगे।
इराक के प्रधानमंत्री ने 9 जुलाई को आधिकारिक रूप से घोषणा की थी कि मोसुल नगर से आतंकवादी गुट दाइश का सफाया हो गया है। अब आतंकवादी गुट नैनवा प्रांत के हुएजा और तल अफर नगरों तक सीमित हो चुके हैं। इराक अब आतंकवादी गुट दाइश के बाद के दौर में प्रविष्ट हो गया है। इससे पहले वाले कार्यक्रम में इराकी सरकार की पहली प्राथमिकता के रूप में हमने मोसुल नगर के पुनर्निर्माण की समीक्षा की थी। आज के कार्यक्रम में हम आतंकवादी गुट दाइश के बाद इराक की राजनीतिक प्राथमिकताओं की समीक्षा करेंगे।
आतंकवादी गुट दाइश के बाद इराक में जो राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं और जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, उन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहली राजनीतिक प्राथमिकता इराक से अलग होने के लिए कुर्दिस्तान क्षेत्र में संभावित जनमत संग्रह का होना है। 9 जुलाई को आधिकारिक रूप से घोषणा की गई कि मोसुल नगर आज़ाद हो गया, परंतु उससे एक महीने पहले इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के प्रमुख मसूद बारिजानी ने घोषणा की थी कि इराक से अलग होने के लिए इस क्षेत्र में 25 सितंबर 2017 को जनमत संग्रह आयोजित होगा। इस आधार पर इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल एबादी के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि वह कुर्दिस्तान क्षेत्र में जनमत संग्रह के विषय की समीक्षा करें और इस विषय पर ध्यान दें।
हालिया 3 वर्षों के दौरान मसूद बारेजानी ने किन कारणों से अपना ध्यान कुर्दिस्तान क्षेत्र को इराक से अलग करने पर केंद्रित कर रखा है, उसकी चर्चा तो आज नहीं करेंगे, परंतु महत्वपूर्ण विषय ये है कि इराक से कुर्दिस्तान के अलग होने के लिए जनमत संग्रह का आयोजन इस देश के संविधान के विरुद्ध है। सन 2005 में इराक का जो संविधान बना उसकी एक धारा के अनुसार इराक एक स्वतंत्र व स्वाधीन देश है और उसकी राजनीतिक व्यवस्था संसदीय है। इस धारा के अनुसार इराक की राजनीतिक व्यवस्था फेडरल है और इराकी संविधान की किसी भी धारा या अनुच्छेद में ये नहीं आया है कि फेडरल क्षेत्र इस देश से अलग हो सकते हैं। दूसरी ओर इराकी संविधान के लिए जो जनमत संग्रह हुआ था उसमें कुर्दों सहित समस्त जातियों ने भाग लिया था और उन सब ने इसे स्वीकार किया था। इस आधार पर इराकी संविधान में कुर्द आवासीय क्षेत्रों सहित किसी भी क्षेत्र के अलग होने के अधिकार को न केवल दृष्टिगत नहीं रखा गया, बल्कि इस प्रकार के विषय का पेश किया जाना इराक की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है, जिसके खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैं।
अब इराक में आतंकवादी गुट दाइश की पराजय निश्चित हो जाने के बाद हैदर अल एबादी की सरकार को चाहिए कि वह सबसे पहले कदम के रूप में इस विषय पर ध्यान दें। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल एबादी ने कुर्दिस्तान क्षेत्र में कराए जाने वाले संभावित जनमत संग्रह की प्रतिक्रिया में कहा कि यह जनमत संग्रह गैरकानूनी है और उसके परिणाम को मानना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह विषय आंतरिक समस्या का कारण बनेगा। इराकी प्रधानमंत्री की इस प्रतिक्रिया में 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु यह कि वह इस जनमत संग्रह को गैरकानूनी मानते हैं और दूसरा बिंदु यह है कि कुर्दिस्तान क्षेत्र में होने वाले जनमत संग्रह के परिणाम को इराकी सरकार के लिए मानना आवश्यक नहीं होगा। और यह महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि उससे एक और यह बात समझ में आती है कि कुर्दिस्तान इराकी संप्रभुता का भाग है। और दूसरी ओर अगर कुर्दिस्तान क्षेत्र में संभावित जनमत संग्रह हो भी गया और वहां के लोगों ने उसके पक्ष में वोट दिया, तब भी उसके परिणामों को इराकी सरकार के लिए मानना आवश्यक नहीं होगा।
वास्तव में इराकी प्रधानमंत्री ने जो ये कहा है कि इसके नतीजे को मानना आवश्यक नहीं है, वो वास्तव में कुर्दिस्तान की स्थानीय सरकार के लिए एक प्रकार की चेतावनी है। हैदर अल एबादी ने जो प्रतिक्रिया जताई उसमें तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इससे इराक की आंतरिक कठिनाइयों में वृद्धि हो जाएगी। इस समय कुर्दिस्तान की स्थानीय सरकार को बगदाद की केंद्रीय सरकार से विभिन्न विषयों पर मतभेद है, जिसके कारण उसे विभिन्न समस्याओं का सामना है, जैसे राजनीतिक गुटों के मध्य मतभेदों का अधिक हो जाना, आर्थिक भ्रष्टाचार और तेल से होने वाली आमदनी में ध्यान योग्य कमी आदि। जन्म संग्रह कराए जाने के लिए किए जाने वाले प्रयास से कुर्दिस्तान की स्थानीय और बगदाद की केंद्रीय सरकार के मध्य अधिक गंभीर समस्याएं अस्तित्व में आ सकती हैं।
कुर्दिस्तान क्षेत्र में संभावित रूप से होने वाले जन्म संग्रह के संबंध में इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल एबादी और दूसरे इराकी अधिकारियों और कुछ कुर्दों ने जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं, उसके बावजूद इराकी सरकार को चाहिए कि वह कुर्दिस्तान के स्थानीय अधिकारियों से वार्ता आरंभ करें और उसे अपनी पहली प्राथमिकता करार दें।
इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आतंकवादी गुट दाइश के बाद इराकी सरकार को चाहिए कि वो इस देश के आंतरिक मामलों में विदेशियों के हस्तक्षेप से मुकाबला करे। इराक में तेल के जो स्रोत हैं उन पर पश्चिमी शक्तियों की लोभ की दृष्टि है, साथ ही इराकी समाज का जो जातीय और धार्मिक ताना बाना है उसके कारण क्षेत्रीय देश विशेषकर सऊदी अरब इराक के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। सन 2014 में आतंकवादी गुट दाइश ने इराक के काफ़ी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, उसमें इस हस्तक्षेप की ध्यान योग्य भूमिका रही है। इस आधार पर कुत्सुल अरबी समाचार पत्र के एक विश्लेषक सईद अशहाबी का मानना है कि मूसिल में जो उपलब्धि मिली उससे इराकी प्रसन्न है और उन्होंने सड़कों पर निकलकर खुशियां मनाई हैं, परंतु अमरीकियों की नीति दूसरी ही है। उनके अनुसार इराक एक अच्छा शिकार है। जब वे सद्दाम की सरकार गिराने के लिए इराक में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने इस बड़े देश में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। सन 2003 के युद्ध के बाद इराक में जो राजनीतिक व सुरक्षा शून्य उत्पन्न हो गया था उसका लाभ उठाया और इराक के स्रोतों पर उनकी लोभ की दृष्टि रही। इराकियों का मानना है कि 3 साल पहले जो दाइश इस देश में आया वो अपने आप नहीं आया, बल्कि उन इराकियों के प्रतिशोध लेने के लिए आया जो इराक की स्वाधीनता और संप्रभुता की सुरक्षा पर आग्रह कर रहे थे।
इराकी सरकार की एक राजनीतिक प्राथमिकता इस देश में संसदीय और प्रांतीय परिषदों का चुनाव करवाना है। इससे पहले प्रांतीय परिषदों का चुनाव जारी वर्ष के आरंभ में होने वाला था, परंतु इस चुनाव को सुरक्षा कारणों विशेषकर आतंकवादी गुट दाइश से लड़ाई के कारण विलंबित कर दिया गया। इराक में संसदीय चुनावों का जो महत्व है उसकी तुलना प्रांतीय परिषदों के लिए होने वाले चुनावों से नहीं की जा सकती। इस आधार पर इन चुनावों का आयोजन इराकी सरकार और राजनीतिक गुटों दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इराकी संविधान की धारा 47 के अनुसार इस देश की फेडरल सरकार में विधि पालिका के 2 भाग हैं, एक सांसद और दूसरे प्रांतीय परिषदों के प्रतिनिधि। इसी प्रकार इराकी संविधान की 55वीं धारा के अनुसार सांसदों का कार्यकाल 4 साल के लिए होता है। नए सांसदों के लिए जो चुनाव होता है वह पुराने सांसदों का कार्यकाल समाप्त होने से 45 दिन पहले होता है। अभी पिछली बार इराक का संसदीय चुनाव 31 अप्रैल 2014 को हुआ था। इस आधार पर इराक के अगले संसदीय चुनाव को वर्ष 2018 में होना चाहिए।
संसदीय चुनावों का महत्व इसलिए है कि कानून बनाने की जिम्मेदारी उस पर है और जिन सांसदों का चयन जनता करती है संविधान के अनुसार वे राष्ट्रपति का चयन करते हैं और राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री के लिए किसी व्यक्ति का नाम पेश कर सकता है। संसद को चाहिए कि प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों का नाम मंत्रिमंडल के लिए पेश करता है वो उसे मत दें। इस आधार पर इराक की फेडरल व्यवस्था में संसद का स्थान व भूमिका स्पष्ट है।
सन 2005 में इराकी संविधान बनने के बाद से अब तक इस देश में 3 बार संसदीय चुनाव हो चुके हैं। पहला संसदीय चुनाव सन 2006 में, दूसरा 2010 में और तीसरा 2014 में हुआ था, जबकि वर्ष 2018 में होने वाला 4th संसदीय चुनाव होगा।
इराक में जो संसदीय चुनाव होते हैं वे इस देश के राजनीतिक गुटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी कारण हर बार के संसदीय चुनावों में भाग लेने वाले गुटों व पार्टियों की संख्या पहले वाले चुनाव की तुलना से अधिक रही है। سن 2006 میں جو سنسدیے چناؤ ہوئے تھے اس میں 275 سیٹوں کے لیے 152 راجنیتک پارٹیوں نے بھاگ لیا تھا۔ اسی پرکار سن 2010 میں 325 سیٹوں کے لیے 181 راجنیتک پارٹیوں نے بھاگ لیا تھا، جبکہ سن 2014 میں 328 سیٹوں کے لیے 277 راجنیتک پارٹیوں نے بھاگ لیا۔ یہاں یہ بات الیکھنیے ہے کہ سن 2016 کی سماپتی تک سن 2018 میں ہونے والے سنسدیے چناؤں میں بھاگ لینے والی 300 پارٹیوں کا نام پنجیکرت ہو چکا ہے اور سنسد کی سیٹوں میں بھی وردھی ہوگی۔
سن 2018 میں جو سنسدی چناؤ ہوگا اس سے پہلے تین بار ہونے والے سنسدی چناؤں سے ادھک مہتوپورن ہوگا، کیونکہ وہ آتنکوادی گٹ داعش کے بعد کے کال میں ہوگا۔ اس بار ہونے والے سنسدی چناؤ میں جہاں آتنکواد سے مقابلہ العبادی سرکار کی ایک وشیشتا سمجھی جائے گی، وہیں اس چناؤ میں شاید عراقی جن سنکھیا کا ایک مہتوپورن بھاگ نہ لے سکے۔ جن لوگوں کے بارے میں سمبھاونا ہے کہ وہ شاید سن 2018 کے چناؤ میں بھاگ نہ لیں، ان میں ادھکانش بے گھر سنی مسلمان ہیں جو آتنکوادی داعش کے حملوں کے کارن بے گھر ہو گئے ہیں۔ اس درشٹی سے بھی عراقی سرکار کو چاہیے کہ وہ سمست عراقیوں کے چناؤ میں بھاگ لینے کے لیے پریاس کریں، کیونکہ اگر عراقی سرکار اس دشا میں کام نہیں کرتی ہے تو یہ اس پر دباؤ ڈالنے اور عراق کے آنترک معاملوں میں ہستکشیپ کے لیے دوسرے دیشوں کو بہانہ مل جائے گا۔
انت میں کہنا چاہیے کہ عراقی سرکار اور اس دیش کی راجنیتک پارٹیوں نے 3 ورشوں تک اس دیش میں آتنکوادی گٹ داعش کی اپستھتی سے کافی پارٹ لے لیا ہوگا، اتا انہیں چاہیے کہ وہ راشٹری ہتوں پر اپنی پارٹی و گٹ کے ہتوں کو پراتھمکتا نہ دیں، کیونکہ اگر اس پرکار کی غلطی ہوئی تو عراق دوبارہ ہنسا اور آتنکی گٹوں کی گتیویدھیوں کا میدان بن سکتا ہے، اور اس استھتی میں راشٹری ہتوں کے علاوہ لوگوں اور پارٹی و گٹوں کے ہت بھی گمبھیر روپ سے خطرے میں پڑ جائیں گے۔ بہرحال آتنکوادی گٹ داعش کے بعد عراق کو ہر سمے سے ادھک ایکتا و ایک جٹتا اور بدھی و ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔